नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में, आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिनकी कलम ने सत्ता, समाज और इंसान के अंदरूनी संघर्षों को बड़ी बेबाकी से उकेरा है। मारियो वर्गास ल्योसा पेरू में जन्मे, बाद में स्पैनिश नागरिक बने और 2010 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। ल्योसा सिर्फ एक उपन्यासकार नहीं है, बल्कि लैटिन अमेरिकी साहित्य के उस प्रसिद्ध बूम दौर के एक ऐसे स्तंभ है जिनकी आवाज आज भी गूंजती है।
बिल्कुल, और उनकी खासियत यह है, जैसा आपने कहा, कि वो महज कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि सत्ता के गलियारों, समाज की जो जटिलताएं हैं और व्यक्ति का विद्रोह या फिर कभी कभी उसका टूट जाना, इन कहानियों के जरिए हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उनकी साहित्यिक यात्रा के जो अहम मोड़ हैं उनको समझें और देखें कि कैसे उनके तजुर्बों ने उनकी जो यादगार रचनाएं हैं उनको शक्ल दी।
तो चलिए सफर शुरू करते हैं उस जमाने से जब ल्योसा ने दुनिया में आंखें खोली। 1936 का साल, पेरू। दुनिया में काफी उथल पुथल थी उस वक्त। स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था, यूरोप पर दूसरे विश्व युद्ध के साये मंडरा रहे थे और खुद लैटिन अमेरिका में कई तरह के तानाशाही शासन उभर रहे थे। पेरू की भी हालत कुछ डावाडोल ही थी, है ना, लोकतंत्र और फौजी हुकूमत के बीच झूलता हुआ।
हाँ बिल्कुल, माहौल बेहद तनावपूर्ण था और बदलावों से भरा हुआ था। और इसी माहौल में 60 और 70 के दशक में लैटिन अमेरिकी साहित्य का वो मशहूर बूम दौर आया। ये कोई संगठित आंदोलन जैसा नहीं था, पर हाँ, एक सांस्कृतिक लहर जरूर थी। गार्सिया मार्केज, कॉर्टेजार, फ्यूएंटेस और हाँ वर्गास ल्योसा, इन जैसे लेखकों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनकी रचनाओं में उनके समाज का दर्द, उसकी उम्मीदें, सब कुछ साफ झलकता था।
यानी साहित्य सिर्फ कला के लिए नहीं था उस वक्त, एक तरह का आईना बन गया था जिसमें राजनीति, समाज, सब कुछ दिख रहा था। क्यूबा क्रांति हुई थी, तानाशाही सरकारें थी, तो जाहिर है बौद्धिक बहसें भी खूब होती होंगी।
निश्चित रूप से, साहित्य उस दौर में राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक बहुत जरूरी जरिया बन गया था। लेखक सिर्फ कहानीकार नहीं थे, बल्कि समाज के आलोचक और विचारक भी थे। और इसमें बार्सिलोना के प्रकाशकों जैसे सॉइस बराल या फिर मुंडो नोवो जैसी पत्रिकाओं ने इन आवाजों को दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसी माहौल में ल्योसा ने यथार्थवाद को आधुनिक प्रयोगों के साथ मिलाया, जैसे कहानी कहने के बदलते अंदाज, बिखरी हुई समय सीमाएं, और अपना एक अलग शक्तिशाली रास्ता बनाया।
उनके निजी जीवन की बात करें तो वो भी किसी उपन्यास से कम नहीं लगता। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने बचपन के 10 साल ये मानकर गुजारे कि उनके पिता जीवित ही नहीं हैं। ये सच है?
हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत नाटकीय मोड़ था। अरेक्विपा पेरू में जन्म हुआ था, माँ और ननिहाल के साथ पहले बोलीविया, फिर पेरू के दूसरे शहरों में बचपन बीता। पिता से अलगाव था, फिर अचानक 10 साल की उम्र में पिता वापस आ गए। ये उनके लिए एक शौक जैसा था। शायद इसी अनुभव ने उन्हें सिखलाया होगा कि जो कहानी बताई जाती है जरूरी नहीं कि वही पूरा सच हो, सच के कई पहलू हो सकते हैं।
और उनके पिता तो उनकी लिखने की इच्छा के भी खिलाफ थे, बल्कि उन्हें मिलिट्री स्कूल भेज दिया था इसी वजह से।
बिल्कुल, पिता चाहते थे कि वो मर्द बने, अनुशासन सीखें और ये लिखने पढ़ने का जो शौक है उसे छोड़ दें। इसीलिए उन्हें लीमा की काफी सख्त मिजाज मानी जाने वाली लियोन्सियो प्राडो मिलिट्री अकेडमी भेज दिया गया। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। जिस माहौल से उनकी रचनात्मकता कुचलनी थी, उसी ने उनके पहले मशहूर उपन्यास द टाइम ऑफ द हीरो उसके लिए कच्चा माल दे दिया।
क्या गजब की विडंबना है, दबाव ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में साहित्य और कानून पढ़ा, मार्क्सवाद से भी प्रभावित हुए और काफी कम उम्र में ही शादी भी कर ली थी।
हाँ, उनका वो विद्रोही स्वभाव यहाँ भी दिखा। महज 19 साल के थे, परिवार के खिलाफ जाकर अपनी आंटी की भाभी जूलिया उड़कीदी से शादी कर ली। वो उनसे उम्र में काफी बड़ी थीं। ये रिश्ता भी बाद में उनके एक उपन्यास का आधार बना, आंट जूलिया एंड द स्क्रिप्ट राइटर। वो काफी हल्का फुल्का आत्मकथात्मक उपन्यास है। खैर, ये शादी ज्यादा चली नहीं। बाद में वो स्कॉलरशिप पर मैड्रिड गए, फिर पैरिस, जो उस वक्त लैटिन अमेरिकी लेखकों का एक तरह से गढ़ था। वहां काफी संघर्ष किया, छोटे मोटे काम किए और खुद को पूरी तरह लिखने में झोंक दिया। वहीं उनकी गार्सिया मार्केज जैसे दिग्गजों से दोस्ती भी हुई। हालांकि वो दोस्ती बाद में एक बहुत कड़वी दुश्मनी में बदल गई। उसकी चर्चा आज तक होती है। जूलिया से तलाक के बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन पैट्रिशिया लियोसा से शादी की।
तो ये जो लेखन के प्रति जुनून था और जीवन के ये नाटकीय अनुभव, ये सब मिलकर उनकी लेखनी में कैसे ढला? क्या चीज है जो वार्गास लियोसा के अंदाज को इतना खास बनाती है?
देखिए, मेरे हिसाब से उनकी सबसे बड़ी देन है आधुनिक कथा तकनीकों का सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण के साथ एक बहुत ही परिष्कृत मिलाप। उन्होंने कहानी कहने के नए तरीके अपनाए, जैसे अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी कहना, समय को आगे पीछे ले जाना, या जिसे वो कम्युनिकेटिंग विसल्स या संवाद करते पात्र कहते थे। इसे ऐसे समझें जैसे फिल्म में स्प्लिट स्क्रीन पर दो अलग अलग दृश्य एक साथ चल रहे हों और उनके बीच कोई गहरा कनेक्शन बन रहा हो, लेकिन ये सब वो शब्दों से एक ही पैराग्राफ में कर दिखाते थे।
और वो टोटल नॉवल यानी संपूर्ण उपन्यास का विचार ये क्या था?
सुनने में बड़ा महत्वाकांक्षी लगता है।
महत्वाकांक्षी तो था ही।
ये एक ऐसी कोशिश थी कि उपन्यास के जरिए किसी समाज या किसी ऐतिहासिक दौर की पूरी तस्वीर उसकी सारी जटिलताओं, विरोधाभासों और किरदारों के साथ पेश की जा सके। जैसे कोई चित्रकार एक बहुत बड़ा डिटेल्ड म्यूरल बना रहा हो जिसमें हर छोटी चीज मायने रखती हो। जोसाक का मानना था कि बिखरे हुए अनुभवों को एक साथ लाकर ही सच्चाई के करीब पहुंचा जा सकता है। कॉन्वर्सेशन इन द कैथीड्रल शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
दिलचस्प, यानी वो यथार्थवादी थे मगर सीधे सपाट तरीके से नहीं लिखते थे। वो तकनीकों का इस्तेमाल करके यथार्थ की गहराई में उतरते थे। उनके पसंदीदा विषय क्या रहे? कौन सी बातें उनके उपन्यासों में बार बार लौट कर आती हैं?
कई ऐसे विषय हैं जो उनके लेखन के केंद्र में रहे हैं, जैसे सत्ता का नशा और उसका भ्रष्ट करने वाला असर, परंपरा और आधुनिकता के बीच का टकराव, व्यक्ति की इच्छाएं और इतिहास की बड़ी ताकतें कैसे टकराती हैं, हिंसा चाहे वो राजनीतिक हो या निजी, मर्दानगी यानी मचिज्मो की पड़ताल, और हर तरह की कट्टरता का खतरा चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, और इन सब के बीच दमनकारी सिस्टम के खिलाफ व्यक्ति का अकेला अक्सर हारता हुआ संघर्ष।
उन्होंने कहा भी था कि वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो दुखी हैं और लिखना उनके लिए अवसाद से लड़ने का एक तरीका है। ये उनके राजनीतिक लेखन को भी एक मानवीय पहलू देता है ना? वो उपदेश नहीं देते बल्कि दिखाते हैं कि कैसे बड़ी विचारधाराएं आम लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं।
बिल्कुल सही। चलिए उनके कुछ प्रमुख रचनाओं पर गौर करते हैं जिनसे ये बातें और साफ होंगे। द टाइम ऑफ द हीरो 1963 से शुरुआत हुई, जिसने पेरू में हंगामा मचा दिया था। मिलिट्री स्कूल का वो कच्चा चिट्ठा था। क्रूरता, पाखंड, मर्दानगी का खोखलापन, कई किरदारों के नजरिए से कही गई कहानी, बिखरा हुआ समय, सरकार इतनी नाराज हुई कि सार्वजनिक रूप से प्रतियां जलाई गईं। इससे उन्हें बदनामी के साथ साथ काफी शोहरत भी मिली।
प्रतियां जलाई गईं, ये तो अपने आप में बताता है कि उनकी कलम में कितनी ताकत थी। और इसके बाद
आया द ग्रीन हाउस 1966, जो तकनीकी रूप से और भी जटिल था। इसमें पेरू के अलग अलग इलाके, अमेजोन का जंगल, रेगिस्तान, शहर और उनकी कहानियां एक साथ बुनी गई हैं। फिर 1969 में आया कॉन्वर्सेशन इन द कैथीड्रल, जिसे कई लोग उनका शिखर मानते हैं। ये पेरू की एक तानाशाही ऑड्रिया के दौर में समाज के नैतिक पतन की कहानी है। इसकी शुरुआत ही उस मशहूर सवाल से होती है, पेरू किस मोड़ पर आकर गड़बड़ा गया। यह सवाल पूरे उपन्यास में एक गूंज की तरह मौजूद रहता है और पाठक को झिंझोड़ता है। ये सही मायनों में एक टोटल नॉवेल है।
पेरू किस मोड़ पर आकर गड़बड़ा गया, क्या जबरदस्त शुरुआत है। ये सिर्फ एक देश के बारे में नहीं है बल्कि कहीं भी सत्ता और समाज के पतन पर सवाल उठाता है। और उनकी कुछ और मशहूर रचनाएं।
हाँ, एक और अहम पड़ाव था ऑन्ट जूलिया एंड द स्क्रिप्ट राइटर 1977। इसमें हास्य और आत्मकथात्मक रंग है। ये उनकी पहली शादी और एक रेडियो सोप ओपेरा लिखने वाले की मेलोड्रामेटिक कहानियों के बीच बुनी गई है। ये कला और जिंदगी के रिश्ते पर मजेदार टिप्पणी करती है। फिर एक बिल्कुल अलग तरह का उपन्यास आया, द वॉर ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड 1981। ये 19वीं सेंचुरी के ब्राजील के एक ऐतिहासिक विद्रोह पर आधारित है। ये धार्मिक कट्टरता और आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा महाकाव्यात्मक चित्रण है।
और हाल के दौर की सबसे चर्चित कृतियों में से एक द फीस्ट ऑफ द गोट 2000 भी है। ये तो एक तानाशाह के बारे में है, राफेल ट्रुजिलो।
हाँ बिल्कुल, ये डोमिनिकन तानाशाह राफेल ट्रुजिलो के आखिरी दिनों और उसके क्रूर शासन का एक दहला देने वाला मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। एक राजनीतिक थ्रिलर की तरह पढ़ा जाता है ये उपन्यास। और दिखाता है कि कैसे बेलगाम सत्ता इंसान को हैवान बना सकती है और समाज पर उसका क्या जहरीला असर होता है। इसके अलावा द स्टोरी टेलर 1987 भी महत्वपूर्ण है, जो अमेज़न के आदिवासी समुदाय माची गोएंगा और आधुनिक दुनिया के टकराव को और कहानी कहने की कला के महत्व को दर्शाता है।
अगर हम उनकी तुलना उनके समकालीन बूम लेखकों जैसे गार्सिया मार्केज से करें तो क्या चीज उन्हें अलग करती है? शुरुआत में तो सब एक तरह से साथ थे, वामपंथी झुकाव भी था सबका।
हाँ, शुरुआत में वो सब क्यूबा क्रांति से काफी प्रभावित थे और वामपंथ की तरफ झुकाव रखते थे। फॉकनर और फ्लैबियर जैसे यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों का प्रभाव भी सब पर था, लेकिन वक्त के साथ ल्योसा का मोहभंग हुआ। क्यूबा में विरोधियों का दमन, सोवियत संघ के कुछ कदम, इन सब ने उन्हें निराश किया। उनका झुकाव धीरे धीरे क्लासिकल लिबरलिज्म यानी उदारवाद और मुक्त बाजार की तरफ हो गया।
और इसी वजह से गार्सिया मार्केज़ से उनकी वो मशहूर लड़ाई हुई जिसके किस्से आज भी चलते हैं।
हाँ, राजनीतिक मतभेद एक बहुत बड़ा कारण थे, हालांकि कहा जाता है कि कुछ निजी वजहें भी थीं। लेकिन यह टकराव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, कलात्मक रूप से भी ल्योसा अलग खड़े थे। जहां मार्केज़ और अन्य लेखक जादुई यथार्थवाद के लिए जाने गए, वहीं ल्योसा ने यथार्थवाद को नई संरचनात्मक जटिलता दी। उन्होंने दिखाया कि यथार्थ को भी उतने ही कलात्मक ढंग से पेश किया जा सकता है बिना जादू का सहारा लिए।
तो आज जब हम उनकी विरासत को देखते हैं तो क्या पाते हैं? वो बूम पीढ़ी के आखिरी बड़े लेखक हैं जो हमारे बीच हैं। उनके राजनीतिक विचारों पर भले ही बहस होती हो, पर उनका योगदान,
हाँ, और यही बहस उन्हें दिलचस्प भी बनाती है। वो किसी एक खेमे में बंद कर नहीं रहे। उनकी विरासत कह सकते हैं दोहरी है। एक तरफ उनका कलात्मक प्रभाव है, उनकी जटिल संरचनाएं यथार्थवादी गहराई ने स्पैनिश भाषा के साथ साथ दुनिया भर के लेखकों को प्रभावित किया है, जैसे चिली के रॉबर्टो बोलानो या स्पेन के जेवियर सरकास। दूसरी तरफ उनके निबंधों और सार्वजनिक बहसों ने उन्हें उदार लोकतंत्र और मानवाधिकारों का एक मुखर पैरोकार बनाया है।
और ये भी दिलचस्प है कि 1990 में उन्होंने पेरू में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो अल्बर्टो फुजीमोरी से हार गए। बाद में उन्होंने स्पेन की नागरिकता ले ली। ये दिखाता है कि वो सिर्फ लिखने वाले लेखक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहे हैं।
बिल्कुल, और उनके जो केंद्रीय विषय हैं, कट्टरता का खतरा, तानाशाही का जहर, व्यक्तिगत आज़ादी की लड़ाई, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज़्यादा। दुनिया भर में आज भी हम ये चीज़ें देख रहे हैं। उनके राजनीतिक स्टैंड पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक लेखक के तौर पर उनका कद बहुत ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनके विचारों की अच्छी झलक देते हैं, जैसे वो कॉन्वर्सेशन इन द कैथीड्रल वाला सवाल, पेरू किस क्षण में गड़बड़ा गया।
ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आत्मावलोकन है। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी राजनीतिक गलतियां आम लोगों की जिंदगी में रिसती हैं और कैसे इतिहास का बोझ हमें ढूंढना पड़ता है।
और उनका वो कथन कि साहित्य एक स्थायी विद्रोह है, लिटरेचर इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट इंसरेक्शन, ये बहुत शक्तिशाली बात है।
हाँ, ये उनके लेखन का मूल मंत्र है। एक तरह से साहित्य को आरामदायक नहीं होना चाहिए, उसे सवाल उठाने चाहिए, सत्ता को चुनौती देनी चाहिए, हमें अपनी बनी बनाई धारणाओं पर सोचने को मजबूर करना चाहिए।
एक और बात जो वो कहते थे कि एक लेखक की देशभक्ति उसकी भाषा है, लेखक की एकमात्र प्रतिबद्धता अपने काम, अपनी भाषा, अपने भूतों के प्रति होती है। इसका क्या मतलब है? भूतों से क्या मतलब है यहाँ?
मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि लेखक की पहली वफादारी कला और सच के प्रति होनी चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा के प्रति नहीं। भाषा ही उसका असली देश है और भूत शायद उसके अंदर के डर, उसकी कल्पनाएं, उसके किरदार हैं जिनके प्रति उसे ईमानदार होना चाहिए।
अच्छा, और अंत में उनके नोबल भाषण से, हमने जो अच्छी किताबें पढ़ी हैं उनके बिना हम बदतर होते, पढ़ने का कार्य लिखने की तरह जीवन की अपर्याप्तताओं के खिलाफ एक विरोध है, यानी पढ़ना भी एक तरह का विरोध है।
हाँ, क्योंकि पढ़ना हमें दुनिया को अलग नजरिए से देखना सिखाता है, ये हमें ज्यादा आलोचनात्मक, ज्यादा समझदार और शायद कम आज्ञाकारी बनाता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि खुद को और समाज को बेहतर बनाने का एक तरीका है, एक जरूरी काम है।
तो इस सारी बातचीत के बाद क्या सोचा जा सकता है? वर्गस ल्योसा की जिंदगी और उनका लेखन हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? कोई एक ख्याल जो श्रोताओं के लिए छोड़े?
शायद ये कि दुनिया की जटिलताओं को समझने के लिए सिर्फ सतही तौर पर देखना काफी नहीं है,
हमें ल्योसा की तरह गहराई में उतरना होगा, संरचनाओं को समझना होगा और कहानी कहने की उस ताकत को पहचानना होगा जो सच को उजागर कर सकती है, भले ही वो सच कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सत्ता हमेशा सवालों के घेरे में रहनी चाहिए, उसे कभी मानकर नहीं चलना चाहिए।
या शायद ये सवाल भी कि एक लेखक के अपने राजनीतिक विचार और उसकी कला के बीच क्या रिश्ता होता है। क्या हम किसी लेखक की कला को उसकी राजनीति से पूरी तरह अलग करके देख सकते हैं, या दोनों एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं।
मानक क्लोजिंग नरेशन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।